नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। सरकार ने इबोला के प्रकोप के मद्देनजर हवाई और समुद्री बंदरगाहों पर निगरानी और तैयारी के उपाय लागू किए। और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री जोनास गहरस्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, नीली अर्थव्यवस्था से लेकर हरित शिपिंग तक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की क्षमता, गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे की प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
इस द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत के इसरो और नॉर्वे की अंतरिक्ष एजेंसी के बीच समझौता ज्ञापन अंतरिक्ष क्षेत्र में संबंधों को और मजबूत करेगा। आज एक त्रिकोणीय सहयोग और समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत और नॉर्वे के बीच साझेदारी को मजबूत बनाने में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों की पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 और 20 तारीख को इटली में होंगे। यह दौरा 5 देशों की यात्रा का अंतिम चरण है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुँच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। एक उच्च स्तरीय अमरीकी उद्योग प्रतिनिधि मंडल ने आज भारत में परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग सहयोग के उभरते अवसरों के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल के इस दौर में अमरीकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, व्यावसायिक हितधारक और नागरिक परमाणु ऊर्जा तथा उन्नत प्रौद्योगिकियों में भारत अमरीका सहयोग से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर डॉ सिंह ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंचे। वे आज से 2 देशों, वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि इस दौरान सामरिक सहयोग बढ़ाने, रक्षा औद्योगिक साझेदारी मजबूत करने, समुद्री सहयोग सुदृढ़ करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अधिक ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
वियतनाम की यात्रा के दौरान श्री राजनाथ सिंह वहां के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ आपसी बातचीत करेंगे। दक्षिण कोरिया में श्री राजनाथ सिंह वहां के रक्षा मंत्री अहन क्यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री सिंह दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा करेंगे और आपसी संबंधों को मजबूत बनाने की नई संभावनाएं तलाश करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों में साझा हितों पर भी विचार विमर्श करेंगे। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
सरकार ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद वह कांगो और युगांडा में इबोला वायरस के हालिया प्रकोप पर कड़ी निगरानी रख रही है। सूत्रों ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थिति की समीक्षा की है और एहतियाती सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय शुरू किए हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली सतर्क है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियन ने अमरीका के साथ बातचीत करने के अपने निर्णय को उचित ठहराया है और कहा है कि कूटनीति में गरिमा जरूरी है, लेकिन ईरान अपने राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा करना जारी रखेगा। उधर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरेनियम के भंडारों, प्रतिबंधों में राहत और पश्चिम एशिया में महीनों से जारी संघर्ष के लिए क्षतिपूर्ति को लेकर बातचीत में गतिरोध रहते हुए ईरान को नई चेतावनी जारी की है। ईरान ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य में परिचालन की निगरानी और प्रबंधन के लिए एक नए नियामक निकाय की स्थापना की घोषणा की है। ये कदम महत्वपूर्ण समुद्री परिवहन गलियारे से संबंधित गतिविधियों की निगरानी और समन्वय के लिए जिम्मेदार एक समर्पित प्राधिकरण के औपचारिक गठन को दर्शाता है। इस बीच सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद भारत में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि मार्शल द्वीप समूह के ध्वज वाला LPG वाहक पोत SYMI लगभग 19,965 मीट्रिक टन LPG लेकर शनिवार रात गुजरात के कांडला स्थित दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण पर पहुंचा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री व्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधि मंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।